के इस्लाम में उस साल का दौर जिसमें अल-फ़ारबी और इब्ने सीना की हयात जिस पर मुश्तमल है, मादी तौर पर बहुत ही हैजान जैस और जहनी तौर पर बहुत ही सरफेज दौर रहा है। मादी तौर पर तो इतने ज़बरदस्त इनकलाबात आते रहे कि हैरत होती है कि उस दौर में जिंदा रहकर अल-फ़ारबी और इब्ने सीना जैसे अशख़ास इतना फलसफे पर ज़बरदस्त काम कर सके। उसी दौर में अल-फ़ारबी और उनके मुरीद और हमख्याल जिनको स्कूल ऑफ अल-फ़ारबी के नाम से याद किया जाता है, यानी यहया बिन अदी सन 893 से सन 974, अबू सुलेमान सिजिस्तानी जिनके वफात 987 में हुई, अबुल हसन आमरी जिनकी वफात 992 में हुई, और सबसे मशहूर अबू हिज्जाम तौहीदी जिनकी वफात 1023 में हुई। इसी दौर में इब्ने सीना तकरीबन 980 या 979 से 1037 तक दुनिया इस्लाम पर बल्कि यूरोप के जहनी और फिक्री रुझान पर अपना सिक्का जमा किए। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इब्ने सीना पर उसी पिछले तकरीबन यूँ कहिए कि 500 वर्षों में जितना काम हुआ फ़ारबी पर और इब्ने सीना पर शायद ही किसी और मुल्क में, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। जैसे अभी रिजवान रहमान साहब ने फरमाया कि उर्दू में एक भी इब्ने सीना और फ़ारबी के फलसफे पर किताब मुझे मुहैया नहीं हो सकी। अभी यहाँ आने से पेशतर टीवी के उर्दू वाला ने कहा था, मैं पुरानी दिल्ली में और रशीदिया बुक डिपो और अंजुमन तरक्की उर्दू वहाँ के जो तस्वीर हैं उनके दौरान मैंने पूछा कि इब्ने सीना पर और फ़ारबी पर आपकी यहाँ कोई किताब है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, उनकी लिखी हुई आप कानून शायद मिल जाएगी, वो भी उनके पास नहीं थी, कहीं और मुझे डायरेक्ट किया गया कि वहाँ चले जाए तो शायद मिल जाएगी आपको। मैंने कहा उनकी अल कानून तो मेरे पास है, वो भी पाकिस्तान से शाया हुई कुछ सालों पहले, वो भी सिर्फ 500 कापियाँ उसकी शाया हुई थी, वो भी बिक गई, आजकल मिलती नहीं है, मुझे लाइब्रेरी से उसको मुहैया करना पड़ा था, लेना पड़ा था कि मैं उसको कर सकूँ, लेकिन वो आसानी से मिल नहीं पाती अल कानून। मैंने सिर्फ कल जिल्लुर रहमान साहब की लाइब्रेरी में उसकी 2-4 कापियाँ तराजू की देखी। ये आलम हमारा है कि हमने न सिर्फ अल-फ़ारबी पर तो छोड़ी हो तो कुछ भी नहीं काम हुआ है, इब्ने सीना तक पर भी उर्दू में कुछ काम मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, खासतौर पर उनके फलसफे पर थोड़ा बहुत उनके टिप पर शायद हुआ है, लेकिन चूंकि ये भी एक मखसूस शोबा है और उसमें सिर्फ तबीबों को इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, आम आदमी को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए वो उसका भी इल्म नहीं होता लोगों को कि क्या लिखा गया है अल-फ़ारबी पर, क्या लिखा गया है इब्ने सीना। ये याद रखने की चीज़ है कि यूरोप में मैंने मद्रास की थियोसॉफिकल सोसाइटी की लाइब्रेरी है, बड़ी मशहूर लाइब्रेरी, दुनिया भर में शोहरत याफ्ता लाइब्रेरी है, उसमें तकरीबन 60 लाख किताबें हैं, उनका दावा है 60 लाख बुक्स रखे हैं। तो मैं वहाँ गया था तलाश करने के लिए, तो मुझे सबसे पुरानी किताब जो उनकी मिली अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ द अल्केमिस्ट के नाम से, और ये किताब में इस किताब में फ़ारबी का जिक्र था क्योंकि फ़ारबी ने कीमिया पर किताब भी लिखी थी और इब्ने सीना का भी जिक्र था, कीमिया पर किताब लिखी थी और अल्केमिस्ट के नाम से जो माने जाते थे उसमें इन दोनों का जिक्र था। बाकी यूरोप के मशाहिर के बारे में तो काफ़ी लिखा हुआ था अंग्रेजी में और ये उसमें अल-फ़ारबी और इब्ने सीना पर। अच्छा बात निकली है तो मैं अर्ज़ करूँ कि इब्ने खलदून ने अपने मुकदमे में आखिरी चैप्टर्स में उन्होंने एक चैप्टर अल्किमी पर भी लिखा है, अल्किमिया पर भी, उसमें पूरा उस जमाने की तमाम किताबों का जायजा लेते हुए कि अल्किमिया पर क्या क्या किताबें शाया होंगी, किन किन मशाहिर ने उसमें रिसर्च किया है वगैरह, आखिर में उन्होंने एक जुमला लिखा जो जहन में रह गया बहुत अरसे से। मैंने इब्ने खलदून का मुकदमा तकरीबन 50 साल पहले पढ़ा था, तो मगर ये जुमला जो उनका आखिरी जुमला था वो याद रह गया। उसमें इब्ने खलदून फरमाते हैं कि राजी जो कीमिया का सबसे ज़बरदस्त मद्दा था और सारी जिंदगी उसने कीमिया पर रिसर्च करते हुए गुजारी, वो बिल्कुल गुर्बत के आलम में मरा। और इब्ने सीना जो अल्कीमिया का ज़बरदस्त मुखालिफ था वो मालदार होकर मरा। तो इससे बड़ा कमेंट अल्कीमिया पर और कुछ हो नहीं सकता, उसकी सच्चाई पर, उसकी अपनी खट पर, कि ये कितना झूठा इल्म है। इब्ने सीना उसके फेवर में लिखे अल्कीमिया के, उसके बड़े ज़बरदस्त क्रिटिक रहे जिंदगी में, और किताब भी जो लिखी तो उसमें भी उसको क्या कीमिया की। इन दोनों मशाहिर की हयात और फलसफे पर कुछ कहने से पहले उन 200 साल दौर पर एक मुख्तसर लेकिन वायराना नज़र डालना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि किन सियासी और ज़ाती हालात में इन दोनों फ़ैलसुफ़ों और ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और किन दुश्वार और पुरख़तर माहौल में रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी और फलसफे को परवान चढ़ाया। ये 200 साल दौर बेहद इज़्तिरारी, हैजान खेज और पुर आशुब दौर रहा है। इसी दौर में सन 930 में करामिता ने मक्के मुअज़्ज़मा पर हमला किया था, बहुत से हाजियों को शहीद कर रहा था और कई दिनों तक लूटमार का बाजार गर्म रखा था मक्के में। जाते जाते उन्होंने काबतुल्ला की दीवार से हजरे अस्वद उखेड़ कर अपने साथ ले गए और 21 बरस तक हजरे अस्वद को अपने कब्जे में उम्मान में मुकय्यद कर रखा था। तो 21 बरस तक हजरे अस्वद काबे से गायब रहा, ये 930 से 951 की बात है। हजरे अस्वद का अगवा इतना बड़ा सानहा नहीं था कि जितना आलम इस्लाम पर उसका असर हुआ। इस हमले और अगवा से यह साबित हो गया कि अब्बासी हुकूमत इस्लाम के सबसे मुकद्दस मकाम और सबसे मुकद्दस आया को भी महफूज नहीं रख सकती थी, यानी अब्बासी हुकूमत तकरीबन कमजोर पड़ गई थी। उसके 15 साल के बाद बोया खानदान ने बगदाद पर अपना तसल्लुक कायम कर लिया। खलीफा वक्त सिर्फ नामो निशान नामो नहाद के हुक्मरान होकर रह गए और बोया हुक्मरानों को सुल्तान के लकब से नवाज कर खुतबे में उसका नाम शामिल होने लगा। ये उसी दौर में, और बोया खानदान जो था शीयत ज़ैदिया फ़िक्ह और मोतज़िला ख़यालात के हामी और अलमबरदार थे। लाहिर है कि उस वक्त की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो सुन्नियों की थी और हुक्मरान जो थे वो शिया थे, तो इसलिए हमेशा एक किस्म का हैरान रहता था तमाम समाज में कि भाई ये इतने सालों के बाद शिया हम पर, अब आजकल भी शायद यही हो रहा है इराक में बगदाद में, तो इसी वजह से जो आज हैजान पाया जा रहा है उस वक्त भी यह हैजान रिपीट होता रहा। बुया उसी दौर में शिया खानदान हमदारी हुक्मरानों का मौसम और हलब में भी उरूज भी हुआ और जवाल भी हुआ। करामती जब मक्के पर काबिज हो रहे थे तो इस्माइली फातिमी हुक्मरानों ने मिस्र पर 970 में कब्जा कर लिया। मिस्र जो अब्बासिया हुकूमत ने तब तक रहा था तकरीबन, उस पर इनका इस्माइलियों का कब्जा हो गया, जो फातिमी खानदान माना जाता था, मशहूर हुआ था और काफी उन्होंने काम किया। अजहर यूनिवर्सिटी का इनका भी उन्हीं के जमाने में हुआ था, और आज भी अजहर यूनिवर्सिटी की जो इमारतें खड़ी हुई उसी जमाने की बनाई हुई इमारत थी। काहिरा की बुनियाद भी उसी जमाने में फातिमियों ने रखी थी। फातिमी खानदान का चौथा हुक्मरान अल वाइस ने जब मिस्र फतह किया तो बगदाद की अब्बासी हुकूमत जबरदस्त तौर से कमजोर पड़ गई थी। उनको फातिमी खलीफा की इंदा से हजरे अस्वद को करामतियों से छुड़वाना पड़ा था। उनके पास ताकत नहीं थी हजरे अस्वद वापस लाने की, और फातिमी खानदान की मदद से, फातिमी हुक्मरानों की मदद से उसको वापस लाकर फिर से काबे में नस्ब किया गया। अक्सर मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि फारबी की पैदाइश सन 870 में हुई, यानी उसी दौर बासिया दौर का जमाना था। तुर्की निजात थे, खानदानी पेशा गालिब की तरह सिपाहगरी का था, मादरी जबान तुर्की थी। चूंकि उम्र का अव्वलीन हिस्सा फारब में गुजरा तो फारसी पर भी काफी दस्तरस हो चुकी थी। जब बगदाद पहुंचे तो अरबी जबान सीखनी पड़ी और सीखना शुरू किया। अपने फितरी मलके की मदद से इस जबान पर भी बहुत जल्द काबू हासिल कर लिया। मंतिक और अरस्तोतालीस के फलसफे पर अबू बिशर मता इब्ने यूसुफ एक ईसाई प्रोफेसर थे, और यूहन्ना इब्ने खैलान या इब्ने हैलान से तालीम हासिल की। इल्म की तलाश में हर्रान दमिश्क और मिस्र के असवार किए। कुछ दिन दमिश्क में बागवानी भी की, गरीब थे इसलिए और कोई पेशा मिल नहीं सका, और जमाने में फिलासफर्स के लिए यूनिवर्सिटीज में जगह मिलती नहीं थी तो इसलिए बागवानी करना पड़ा। सूफी मनीष आदमी थे, बेहद साहब को और हाकिम वक्त के आगे भी न अपना तुर्की लिबास तब्दील किया और न बेअदबी करने से बाज आते थे। बड़े साफ होते, बड़े गुस्ताख किस्म के आदमी थे। फलसफा और सियासत के अलावा फारबी ने मौसीकी पर भी जबरदस्त उबूर हासिल किया था। मौसीकी पर इसलिए मौसीकी पर एक जखीम किताब किताबुल मौसीकल कबीर के नाम से लिख पाई थी। ये उबूर सिर्फ थियोरिटिकल उबूर नहीं था, खुद जबरदस्त मौसीकार थे। अमली तौर पर भी हमेशा जब जरूरत पड़ जाती थी या जब जज्बा उभर आता था तो खुद शामिल हो जाते थे। एक मरतबा सैफुद्दौला ने जिसके दरबार में फारबी साहब बारिया हुए थे तो अपने दरबार में इल्मी और अदबी महफिल के इख्तिताम पर